प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 22 जून 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं सुरेश संखला जोधपुर राजस्थान से, मनीष नगुलवार पुणे महाराष्ट्र से, मानवेंद्र कुमार द्विवेदी रीवा मध्य प्रदेश से, कुलदीप सिंह हिसार हरियाणा से, दिनेश कुमार कोयंबटूर तमिलनाडु से, लोकेश कुमार मीना कोटा से और देवेंद्र सिंह धौलपुर राजस्थान से। तो सुरेश, मनीष, मानवेंद्र, कुलदीप, दिनेश, लोकेश और देवेंद्र, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसके बाद एक बधाई है आप सब की तरफ से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और मेरी ओर से भी। और यह बधाई है वीरेंद्र यादव को जो न्यू दिल्ली के में रहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। उन्होंने एक मेल भेजा है कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड योगा डे पर कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था और उसमें वीरेंद्र यादव को सेकेंड प्राइज मिला है और उन्होंने इसका श्रेय डेली ऑडियो गाइडेंस को दिया है। तो वीरेंद्र, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और हम सब की तरफ से बहुत शुभकामनाएं भी, बहुत अच्छे भविष्य के लिए और भविष्य में और भी बहुत अच्छी सफलताओं के लिए भी। निश्चित रूप से मित्रों, जब आप लोग इस तरह का श्रेय देते हैं तो थोड़ी सी खुशी तो होती ही है, ये जानने के बावजूद कि जो कुछ भी श्रेय है वो आपके खुद का है, बोझ आप उठाते हैं, दूसरे हम जैसे लोग तो उसमें थोड़ी सी मदद कर देते हैं, लेकिन कभी कभी होता ये जरूर है कि ये थोड़ी सी मदद ही बहुत बड़ी मदद बन जाती है, बहुत बड़ा करिश्मा कर जाती है। जैसे कि यदि आप बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहे हों और अगर चलते रहते तो हो सकता है कि मंजिल बगल से क्रॉस कर जाते मंजिल के, लेकिन कि कोई मिला, उसने आपको थोड़ा सा टर्न दे दिया, आप थोड़े से मुड़ गए और पता लगा कि वह मंजिल जो बगल से गुजर जाती अब वह आपकी पकड़ में आ गई है। इतना जरूर होता है और मैं समझता हूं कि जो डेली ऑडियो गाइडेंस है या एकेडमी की जो क्लासेज हैं जिसमें स्टूडेंट को 15 दिन के लिए सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में बताया जाता है, उसका रोल लगभग इसी तरह का होता है। बाकी तो सारा श्रेय उन लोगों को ही जाता है जो सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी एक परंपरा है, कह लीजिए एक संस्कृति है, इस तरह से अनुग्रहित होने का, इस तरीके से आभार व्यक्त करने का, और मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे कल जब मैं मेल पढ़ रहा था तो ये पढ़कर बहुत सुखद आश्चर्य हुआ, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सुखद अनुभूति हुई कि बहुत सारे मेल मेरे उस लाइफ मैनेजमेंट के बारे में थे जो मैंने अपने एहसास के बारे में लिखा था। पूर्व मानसून की बौछार जब भोपाल पर हुई तो सुबह उठने के बाद मैंने कैसा महसूस किया, उसके ऊपर मैंने लाइफ मैनेजमेंट में आप लोगों से कुछ बातें शेयर की थी। फ्रेंड्स, सच पूछे तो इसको रिकॉर्ड करने के बाद मन ही मन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इस इश्यू पर बात नहीं करना चाहिए था। इसलिए एक तो ये मेरी निहायत अपनी अनुभूतियां हैं, जरूरी नहीं कि वो दूसरों की भी अनुभूतियां हों। फिर मुझे सच पूछे तो मन में थोड़ा सा अपराध बोध सा भी महसूस हुआ कि मैं अपनी अनुभूतियों को अपने प्रिय श्रोताओं की अनुभूतियों पर क्यों थोपना चाहता हूं, या मैं क्यों ये बताना चाहता हूं कि मेरी ऐसी अनुभूतियां हैं जो बहुत बड़ी हैं, आप लोग इसे देखिए, जांच कीजिए। फिर मुझे ये भी लगा कि ठीक है, प्रकृति वर्णन से अपनी संवेदनाओं को जोड़ करके मैंने अपनी जो बात कह दी तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए या जो मेरे और भी श्रोता हैं उनके लिए मैसेज क्या गया, उन्हें जिंदगी के बारे में जानने को मिला ही क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उनके 12-13 मिनट यूं ही जाया कर दिए सिर्फ इसलिए कि मेरे मन में एक उमंग उठी है, एक उत्साह जगा है और मैंने उस उमंग और उत्साह को अपने इन 12-13 मिनट के डेली ऑडियो गाइडेंस में आपके सामने उड़ेल दिया। तो ये भावना मेरे अंदर थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपके सामने इसे स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैं कल मेल पढ़ रहा था तो सच पूछिए मेरा मन और दिल और दिमाग और आत्मा कह लीजिए एकदम ही उत्साह से, ऐसा लगा जैसे कि विस्फोट हो जाएगा। ये क्या, मैं ये मेल में क्या पढ़ रहा हूं? स्टूडेंट्स को वो हिस्सा इतना अधिक पसंद आया और वो भी केवल एक दो स्टूडेंट को नहीं, मुझे लगता है कि उस पर जितने सकारात्मक मेल आए हैं लाइफ मैनेजमेंट के किसी भी टुकड़े के बारे में एक दिन में उतने सकारात्मक कभी फीडबैक आए ही नहीं। मेरे लिए सच पूछे तो आश्चर्यजनक था और बहुत सुखद भी था, जिसका श्रेय मैं आप लोगों को देता हूं। दूसरी जो सच पूछे तो इससे भी कई गुना जो ज्यादा महत्वपूर्ण बातें थी उसमें फ्रेंड्स, वो ये कि जो स्टूडेंट मेल लिख रहा था वो पता नहीं क्यों बड़े अलग तरीके से मेल लिख रहा था। मैंने यहां तक देखा कि बहुत से स्टूडेंट जो लगातार मेल लिखते रहते हैं, डेफिनेटली मैं उन सबको पढ़ता हूं और उसमें से बहुत से स्टूडेंट्स के नाम याद हो जाते हैं कि अच्छा कुछ दिनों पहले इसने ये मेल लिखा था, कुछ दिनों पहले इन्होंने ये मेल लिखा था, और कुछ कुछ ये भी याद हो जाता है कि हाँ ये किस तरीके का मेल लिखते हैं, इनका स्टाइल क्या है मेल लिखने का, भाषा कैसी है, सब्जेक्ट क्या रहते हैं, वो भी दिमाग में कुछ कहीं ना कहीं दर्ज हो ही जाता है। मित्रों, मुझे जो आश्चर्य हुआ कल के मेल पढ़ने पर वह यह हुआ कि लोगों ने कंटेंट बेस्ड मेल लिखे थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंटेंट बेस्ड मेल। व्हाट डू आई मीन बाय कंटेंट बेस्ड मेल? मतलब उन्होंने सिर्फ ये नहीं लिख दिया कि आज का लाइफ मैनेजमेंट बहुत मजा आया और बहुत अच्छा था और बहुत ही भावना प्रधान था, ऐसा नहीं था। लोगों ने बताया कि उसमें क्या था, इसको कहते हैं कंटेंट बेस्ड। जैसे कुछ मैं आपको उदाहरण बताऊं, और मैं दोस्तों ये बात इसलिए स्पेशली कह रहा हूं क्योंकि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। सिविल सर्विस में आपका जो आंसर होना चाहिए वो कंटेंट बेस्ड होना चाहिए, भले ही आप ऐसे ही क्यों ना लिख रहे हो। यहां तक कि जीवन में जब आप किसी से बात करें तो कंटेंट बेस्ड होने चाहिए चीजें। तो उसी के लिए मैं, उसी को आधार बनाकर या कह लीजिए उसी भावना से, उसी विचार से मैं यहां कुछ कंटेंट की बात कर रहा हूं। एक मेल में मुझे ये पढ़ने को मिला कि सर आपके जो कहने का अंदाज था वो बहुत खूबसूरत था, मजा आ गया। अब आप देखिए कि कम्युनिकेशन स्किल पर उसमें एक कमेंट हो गया, राइट? एक मेल में आया कि सर आपने जो चाय की झाग का उदाहरण दिया, मानो कि किसी ने कैनवास पर कोई रंग की शीशी उलट दी, वो तो अद्भुत था, अवेसम था। मैं जिंदगी में बहुत कम इस शब्द का प्रयोग करता हूं लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत था। अब उन्होंने उसकी जो उपमा थी या रूपक था, जो भी कहने का एक भाषाई अंदाज था, ये तो पहली बार जो कहने का जो अंदाज जिसकी मैंने बात की वो तो टोन पर था कि आपने किस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया। दूसरा इस आधार पर था कि उनको वो भाषा अच्छी लगी या वो रूपक या उपमा जिसका उदाहरण दिया गया वो अच्छा लगा। किसी को ये बात बहुत अच्छी लगी कि घास की तिनकों पर, पत्तों पर ओस की बूंदे सजी हुई थी और जो पत्ता उठा हुआ था वो खाली था, लेकिन जो पत्ता थोड़ा सा झुका हुआ था उस पर ओस की बूंदे थी। इस तरह की जो बात मैंने कही थी तो उन्होंने कहा कि इसमें जीवन का कितना बड़ा संदेश है। किसी ने ये कहा कि इससे हमारी जो सहानुभूति थी या अनुभूतियां थी वो फिर से जागृत हो गई, संवेदनाएं इसमें बहुत जबरदस्त थी। तो मेरे कहने का मतलब कुल दोस्तों यह कि बहुत से मेल उसमें कंटेंट बेस्ड थे। सारे मेल की बात तो मैं नहीं कहता लेकिन बहुत से मेल कंटेंट बेस्ड थे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और साथ ही यह भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जब मेल लिखें तो उस मेल को आप एक औपचारिक तौर पर मत लीजिए कि ठीक है चलिए लिखना है हम लिख दें, उसमें भी समय लगाइए। आप मेल लिख रहे हैं, उस मेल में आपका नाम है और प्लीज आपने स्थान का भी नाम दिया करें, उसमें आपका स्थान का नाम है, मतलब उस पर आपकी मुहर है आपके नाम और स्थान के कारण। इसके महत्व को समझिए, आप कह रहे हैं कि ये मेल मैंने लिखा है तो उसमें आप होने चाहिए, आपकी झलक होनी चाहिए, आपकी झलक होती ही है, तो क्यों नहीं कि वो आपकी झलक बेहतर ही हो। जैसे आप जब सो के उठते हैं या घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपनी झलक दुनिया को दिखाने जा रहे हैं, बाहर निकलेंगे लोग आपको देखेंगे, तो आप वैसे ही नहीं चले जाते है ना। आपने देखते हैं कि कपड़े वपड़े तो ठीक ठाक हैं, अगर बहुत टूड़े मुड़े कपड़े पहने हुए हैं तो जरा सा साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहन लो, बाल वाल में जरा कंघी मार लेते हैं, दाढ़ी बहुत बढ़ी हुई तो लगता है यार जल्दी से दाढ़ी बना लो। किस लिए? ताकि जब लोग आपको देखें, आपकी जब उनको झलक मिले तो वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करें। तो फ्रेंड्स, जो आप मेल लिखते हैं याद रखें कि उनमें आपकी झलक होती है, आप जो भी कहते हैं उसमें आपकी झलक होती है, आप जब भी किसी से कोई भी बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसमें आपकी झलक होती है, हर जगह आप होते हैं। तो मेल लिखते समय उसका भी उपयोग कीजिए, उसके भी महत्व को समझिए, जानिए कि आप अगर मेल लिख रहे हैं तो उसमें चूंकि मेरी झलक जानी है तो मैं उस पर सोच विचार करूं, मुझे क्या लिखना है, मैं भाषा पर काम करूं कि मुझे किस अंदाज में लिखना है। क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने अपने मेल को एडिशन या डिलीशन किया हो, एडिट किया हो, अपने ही लिखे हुए मेल को फिर से पढ़कर उसमें चेंजेस किए हों? इस शब्द की जगह ये शब्द रखा जाना चाहिए। अच्छा, इस बात को इस तरीके से न कहके इस तरीके से कहा जाए। अच्छा, ये मेल 10 लाइन का हो गया है, बड़ा मेल हो गया है। याद रखिए, मेरे पास एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के मेल आ रहे हैं। मित्रों, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने मेल को छोटा कीजिए। मान करके चलिए कि अगर आप एक डेढ़ पेज का मेल लिख रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगा कि वो पढ़ा नहीं जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि आपने अपनी बात कह दी, पहुंचा दी, आपका मन हल्का हो गया। नहीं, आपकी बात नहीं पहुंची है, इसको समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। फिर आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं और गलत फहमी में है, ये बात मैं ईमानदारी के साथ आप सबके सामने कबूल कर रहा हूं। उतने बड़े मेल नहीं पढ़े जाते हैं, जो मेल जितना छोटा होगा उतने पूरी तरह से पढ़ा जाएगा, और पढ़ा जाए या न जाए उसका इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। आप मत सोचिए कि बड़ी बड़ी बातें लिख करके और लंबे चौड़े दास्तान सुना करके आपने अपनी बात को अच्छे तरीके से कह दिया। अच्छे तरीके से कहने का ढंग होता है प्रभावशाली तरीके से कहना, और आप अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से तभी कह सकते हैं जब आप संक्षिप्त में कहें। संक्षिप्तता का बहुत बड़ा महत्व होता है, राइट? क्या आप लोगों में से किसी ने कभी ये किया है कि मेल जरा 10 लाइन का हो गया तो इसको यार काट करके 6-7 लाइन का करते हैं, 5-6 लाइन का करते हैं? अक्सर हम ऐसा नहीं करते मित्रों, आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हम लोग आर्टिकल लिखते हैं तो ऐसा करते हैं, आप ताज्जुब करेंगे कि एक एक शब्द पर कितनी जद्दोजहद करते हैं। शब्द रखा, मन नहीं भरा, नहीं इससे मन नहीं भर रहा है, नहीं इसकी जगह दूसरा शब्द, दूसरा लाए, नहीं इससे भी मन नहीं भरा, कुछ और शब्द लाया जाए, और वो शब्द मिल ही नहीं रहे हैं, छोड़ दिया, फाइनल नहीं कर रहे हैं, वो शब्द मिलेगा, पता लगा कि रात में वो शब्द सूझा है तो फिर उसको शामिल कर रहे हैं और अगले दिन फिर उस आर्टिकल को शेप दे रहे हैं कि हाँ अब बात बन गई। मित्रों, आपको ये मेहनत करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आप सब में वह क्षमता है। प्रकृति वर्णन पर जो आप लोगों ने मेल लिखा है इस बात का प्रमाण है कि आप सब में वो क्षमता है। जिन्होंने नहीं लिखा है उनमें भी वो क्षमता है, और जिन्होंने लिखा लेकिन उस अंदाज में नहीं लिखा, याद रखिए कि उनमें भी क्षमता है। अभी बरसात के दिन है, आप अपने सामने की जमीन को देख लीजिए, तो बिल्कुल चट जमीन पड़ी है, उस पर कुछ नहीं है, धूल है, झंखाड़ है, कुछ भी नहीं, हरियाली है ही नहीं। आप एक सप्ताह के बाद देखिएगा, पानी गिर चुका है उस पर, हरियाली में तब्दील हो जाएगी, उस पर बिल्कुल हरे रंग का कारपेट बिछ जाएगा, यानी कि वो हरा रंग उस जमीन के अंदर छिपा हुआ था, ढका हुआ था, लेकिन धूल की ताकत इतनी ज्यादा थी, जो गर्मी थी उसकी ताकत इतनी प्रबल थी कि इन दोनों ने मिलकर के उस हरे रंग को धूसर रंग में तब्दील कर दिया था। लेकिन जैसे ही उस हरे रंग को अपनी ताकत का एहसास हुआ, जब उसे पानी मिला और पानी मिलने के बाद वो पहली बार जागा, अरे बापरे, अच्छा मैं ये हूं, और जैसे ही वो जागा उस धूसर रंग को तोड़कर उसके सीने को फाड़कर बाहर आ गया और चारों तरफ आपको हरा रंग ही फैला फैला नजर आ रहा है। मित्रों, वो सब ताकत आप लोगों के अंदर भी है, फर्क बस केवल इतना है कि कौन उसको रियलाइज करके और उस पर कितनी मेहनत करता है। तो फ्रेंड्स, आज हालांकि मैंने सोचा था कि प्रकृति के वर्णन के बहाने मैं आपको प्रकृति और हमारा जो जीवन है, हमारी जो क्षमता है, हमारे जो जीवन का अंदाज है, उसके बारे में मैं आपको कुछ और भी बहुत खूबसूरत बातें बताऊं, लेकिन बात आज मेल के बहाने इसी में ही गुजर गई है। तो चलिए, कोई बात नहीं, हो सका तो कल हम लोग फिर इस प्रकृति और हमारे तादाद में हमारे जीवन जीने का जो एक प्राकृतिक अंदाज होना चाहिए, मैं डेफिनेटली उस पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि प्रकृति का एक सिलसिला अब कम से कम बन गया है। लेकिन आप घबराइए मत, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, कल ही हम शुरू करेंगे और कल ही इसको खत्म भी कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्टेज पर, और आपको ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य हो गया, या कह लीजिए कि आप चौंकेंगे कि आज का यह जो नेक्स्ट स्टेज है वो AIR न्यूज का स्टेज नहीं है। फ्रेंड, जिस तरीके से आप लोगों ने लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट में मेरे परिवर्तन को हाथों हाथ लिया है, सिर माथे पर लिया है, मैं चाह रहा हूं कि दूसरी चीजों में भी अब हम थोड़े थोड़े परिवर्तन बीच में करते जाएं और फिर हम अपनी बेसिक चीजों पर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जो रेडियो न्यूज है और जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं, अखबार हैं, इनका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तरीके थोड़े बहुत अलग अलग हो सकते हैं, जो बीच बीच में मैं करता भी रहा हूं, लेकिन इसी के साथ साथ हम एक दूसरे किस्म के भी चीजें शामिल कर सकते हैं, जिन्हें आप चाहें तो प्रयोग का नाम दे सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं फ्रेंड्स, कि जो मैं बीच में आप लोगों को वायदे कर देता हूं, उस वायदे के लिए अलग से टाइम एडजस्ट कर पाना इस 30-32-33 मिनट्स में जरा सा मुश्किल होता है, या तो फिर मैं दूसरे को कट करूं। जैसे मान लीजिए कि मैं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को कट कर सकता हूं, लेकिन मित्रों, अब सच पूछे तो इसका दायरा अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है, या अब ये सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक सीमित नहीं है, इसको बड़े लोग सुन रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में सुने जा रहे हैं, मुझे मेल मिलते हैं, लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं, इसको काट काट करके अपने पास रखते हैं, बीमार लोग सुन करके अपने को उत्साहित महसूस करते हैं। तो अब मुझे लगता है मेरे दोस्तों कि ये जो लाइफ मैनेजमेंट है, इसका कंट्रोल अब मेरे हाथ में नहीं रह गया, सच पूछिए तो ये लाइफ मैनेजमेंट ही मुझे कंट्रोल करने लगा है। एक कवि हुए हैं घनानंद, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी दोस्तों। उन्होंने कहा था कि लोग तुताही कवित्त बनावत, मोहि तो मोरे कवित्त बनावत, कि लोग कहते हैं कि मैंने कविता लिखी है, लेकिन मेरे साथ तो उल्टी बात है कि मेरी कविता ही मुझे लिखती है, मोहि तो मोरे कवित्त बनावत, मुझे मेरी कविता बनाती है, कविता मुझे लिखती है। तो वही हालत हो गया कि अब लाइफ मैनेजमेंट को आप लोग चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा हूं, तो इसको कट करना टाइम का 2-3 मिनट का हो सकता है, हटाना मेरे लिए मुश्किल है। नो डाउट कि ईमेल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहते हैं, वो तो टाइम भी 2-3 मिनट लेता है, उसको नहीं हटाया जा सकता। अखबारों के आपने देखा है कि डिस्कशन को मैंने काफी कम कर दिया है, उसके कारण है क्योंकि अखबारों की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग उसमें पढ़ लेते हैं, और फिर जो इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स होती हैं तो करंट कंटेंट में हम उसकी खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो उसको वहां आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अखबारों के बारे में भी चर्चा थोड़ी सी कम हो गई है। AIR न्यूज को हम इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि आप में कैपेसिटी बिल्डिंग करनी बहुत जरूरी है कि आप न्यूज को कैसे सुनेंगे और सिविल सर्विस के लिहाज से उसे कैसे देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स उसमें से कैसे निकालेंगे, तो उस पर चर्चा करनी जरूरी है, और वो उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए अब मैंने सोचा है कि कभी कभी अगर जरूरत महसूस होती है तो न्यूज वाले पोर्शन को हटा करके हम किसी दूसरे इशू पर बात कर सकते हैं और वो हमारे लिए उपयोगी होगा। आप देखिए कि यहां तक मुझे मुश्किल जा रही है कि जो मैं आपको सैटरडे को क्वेश्चन देता हूं उसका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, इसको एडजस्ट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं जिसको आप लोगों की जनरेशन टिप्स कहती है, फ्रेंड्स इस टिप्स पर सच पूछे तो मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है, और जिस पर मेरा खुद भरोसा नहीं हो उसे मैं आपको कैसे परोस सकता हूं। आप लोगों को भरोसा हो सकता है, बहुत से लोग देते भी होंगे, आपके काम भी आते होंगे, मैं उसे अस्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो मैं उसे शॉर्टकट में केवल एक बताने के लिए बताकर अपनी खाना पूर्ति कर लूं, उसे मुझे पता नहीं क्यों अपराध बोध होता है, उस तक को मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो अभी जो आज के लिए जो मैंने सोचा है फ्रेंड्स, वो ये है कि अब मैं चूंकि AIR न्यूज आप लोग सुन चुके हैं, सुनना ही चाहिए, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी लगभग लगभग जो स्टूडेंट थोड़े से लंबे समय से डेली ऑडियो गाइडेंस को सुन रहे हैं वो बड़े आराम से उसका अनुमान लगा लेते होंगे, क्योंकि मेरे पास जो मेल आते हैं उसमें उससे मुझे पता भी चलता है कि सर मैंने ये सोचा था और आपने बिल्कुल वही वही बताया। उसके जो एनालिसिस है वो भी थोड़ी सी कैपेसिटी आप लोगों में ऑलरेडी आ ही चुकी होगी, कुछ लोगों में तो बहुत अच्छी कैपेसिटी आ चुकी होगी, लेकिन हम इसे बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पर ही ज्यादा बातें हम करेंगे। तो मैं कभी कभी की बात कर रहा हूं, जो आज मैं लिबर्टी ले रहा हूं उस तरह की लिबर्टी लूंगा, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मित्रों, मुझे ये बात इसलिए सोचनी पड़ी क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने आप लोगों से कहा था फ्राइडे को कि आप सब उड़ता पंजाब देखें, और आप लोगों ने ये फिल्म देख भी ली होगी, और नहीं भी देखी हो तो कोई बात नहीं, मैंने कहा था कि हम इस पर बातचीत करेंगे। मैं चाहता तो इसे लाइफ मैनेजमेंट में ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, लाइफ मैनेजमेंट में लेना, इसका सरलीकरण करना होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विस के लिहाज से, थोड़ा सा बौद्धिक भी है, तो लाइफ मैनेजमेंट में जाने के बाद ना उन चीजों का स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है, फिर आप लाइफ के हिसाब से बातें करते हैं, है ना। लेकिन यदि मैं उसे सिविल सर्विस के एनालिटिकल पार्ट में लूंगा, जैसे कि AIR न्यूज के पार्ट में मैंने लिया है, तो फिर मैं उसे आर्ट लिटरेचर कल्चर के हिसाब से उसकी बात करूंगा, मैं लाइफ के हिसाब से बात नहीं करूंगा। मैं तीन दिन तक कोशिश करता रहा, दो दिन तक, कि किसी तरह से ये मेरी पकड़ में आ जाए, मेरी पकड़ में आ जाए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आज तीसरे दिन फिर मैंने यही फैसला किया दोस्तों कि अब हम ये प्रयोग करके देखते हैं। मैं जरूर आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों को मेरा ये प्रयोग कैसा लगा, उसके बारे में आप जरूर मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों को ठीक लगेगा, उचित लगेगा, तो आगे भी हम इस तरह के लिबर्टी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगा कि नहीं सर, वो AIR न्यूज की कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मुझे बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, फिर आप लोगों की जरूरत के हिसाब से इसे मैं उसी पैटर्न पर कंटिन्यू कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं उड़ता पंजाब पर थोड़ी सी बातें आपसे करूंगा, हालांकि टाइम काफी कुछ स्पष्टीकरण देने में ही खत्म हो गया है, निकल गया है, लेकिन फिर भी जो वक्त है उसमें हम लोग बात करेंगे। और मुझे लगता है कि स्पष्टीकरण देना भी बहुत जरूरी था, ताकि आपके अंदर ना किसी भी चीज के डिसीजन लेने की जो एक लॉजिक होना चाहिए वो आए। अदरवाइज मैं सीधे सीधे कह सकता था कि मैं उसको ड्रॉप करके और इसको कर रहा हूं, लेकिन मित्रों, जो मेरा पर्पज है वो केवल आपके साथ 30-32 मिनट गुजारना नहीं है, जो मेरा पर्पज है वो है आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग। ये मेरा आदर्श वाक्य है, ये मेरा नारा है, और ये मेरा धर्म वाक्य है, कह लीजिए कैपेसिटी बिल्डिंग। इसलिए मैं अगर छोटी छोटी बातें भी आपके सामने रखता हूं, तो इस तरीके से रखने की कोशिश करता हूं उसमें भी आपको एक विश्लेषण की झलक मिल सके, विचारों की दीप्ति दिखाई दे सके, ये मेरा पर्पज होता है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने इतने डिटेल में आपको ये सफाई दी है। तो फ्रेंड्स, आइए, तो जो वक्त बचा है थोड़ा सा ही सही, कोई बात नहीं, हम उड़ता पंजाब पर बात करते हैं, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने उड़ता पंजाब फिल्म डेफिनेटली देख ली होगी। सच पूछे तो जब सिविल सर्विस में मैंने आप लोगों से उड़ता पंजाब फिल्म देखने की बात कही थी, तो इनफैक्ट मैंने आपको उड़ता पंजाब फिल्म पढ़ने की बात कही थी कि आप उड़ता पंजाब फिल्म को पढ़कर आए। आपने देखा होगा कि जब आप फिल्म देखने गए थे मेरे कहने के बाद, तो ये पहला ही बार का शायद आपका अनुभव होगा कि फिल्म को देखने का अंदाज आपका बिल्कुल बदल चुका था, ये आपके माइंड ने ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया था। अब आप बहुत सतर्क होकर के फिल्म को देख रहे थे, इससे पहले आपने किसी भी फिल्म को इतनी सतर्कता के साथ नहीं देखा था आप, क्योंकि उस समय आपने अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि आपको तो इंटरटेनमेंट के लिए आप यहां आए हैं। लेकिन इस बार आपको लग रहा था कि नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं, हम इसे समझने के लिए आए हैं, हम इस पर विचार करने के लिए आए हैं। हो सकता है कि सर इस पर जब समझाएंगे तो वो चीज हमारी समझ में आ जाए, तो इस लिहाज से देखें कि हमसे कोई चीज इसमें छूटने न पाए। फ्रेंड्स, इसके बाद जब आप फिल्म देख करके निकले, और जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होंगे या अपने घर वालों को भी आकर के इस फिल्म के बारे में बता रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि आपके फिल्म के बताने का अंदाज भी बिल्कुल बदल गया है। इससे पहले जब आप फिल्म देख करके आते थे तो आप स्टोरी बताते थे, और स्टोरी की उन चीजों को बताते थे जो आपको ज्यादा रोचक लगती थी, लेकिन इस बार जब आप स्टोरी बता रहे हैं तो रोचकता उसमें से गायब है, उसमें वैचारिकता आ गई है, उसमें थॉट्स आ गए हैं। और ये थॉट्स और ये जो वैचारिकता है, याद रखिए कि ये दो स्तर पर होंगे। आप सब अपना अपना मूल्यांकन कीजिए, अपने अपने दिमाग का मूल्यांकन कीजिए। उड़ता पंजाब का तो मूल्यांकन हम आगे चल करके करेंगे, लेकिन पहले आप अपने दिमाग का मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, और ये सिविल सर्विस की तैयारी करते समय किसी भी किताब को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, आर्टिकल को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, उससे भी जुड़ा हुआ है। मित्रों, जब आप अपने दोस्तों को या घर वालों को इसकी कहानी बता रहे थे तो उसमें दो चीजें शामिल हो गई थी। पहला तो यह है कि उसकी जो मूल समस्या है वो शामिल हो गई थी। अब आपका ध्यान नशे की समस्या पर ज्यादा था। जब आप देख रहे थे तब भी आप उस पर फोकस कर रहे थे कि ये कैसे कैसे प्रिवेल कर रहा है, केंद्र में नशा आ गया था। दूसरी चीज जो आई थी वो थी संवेदना, सेंसिटिविटी। आपकी ये जो संवेदना थी वो किससे जुड़ी हुई थी? अब आप खुद अब मार्क कीजिए अपने दिमाग का, वो बल्ली से जिसको भर्ती करा दिया गया है कि एनजीओ के संस्थान में, कि इससे किस तरह से इसके नशे की लत छूटे, और दूसरी तरफ आपकी जो संवेदना जुड़ी थी वो उस बिहारीन मजदूरन से जिसे आप आलिया भट्ट कहना ज्यादा पसंद करेंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को आलिया भट्ट को इस रूप में देख करके बड़ी तकलीफ हुई होगी, कितना गजब का उसने रोल किया है। और अगर आपको तकलीफ हुई है तो आलिया भट्ट के रोल की सफलता है कि कितने तरीके से, कितने अच्छे अंदाज में उसने अपना रोल प्ले किया। तो आपके कहने के अंदाज में ये दोनों चीजें शामिल हो चुकी थी। आप देख रहे हैं दोस्तों कि कैसे आपने दिमाग को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरा उद्देश्य इस फिल्म को देखने के पीछे क्या है। दिमाग आपका साथ देने लगा और आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो काम करने लगा। आपको नहीं लगता है कि आपका दिमाग आपका कितना आज्ञाकारी सेवक है? मित्रों, वो आपका आज्ञाकारी सेवक ही है, उसे सेवक तो समझिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हमने अपने दिमाग को अपना मालिक बना दिया है और अपने दिमाग के कहे अनुसार हम काम करने लगे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा संकट है। मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन नहीं कर रहा है, ऊब हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाता हूं। ये क्या मजाक हो रहा है? ये कोई समस्याएं हैं दोस्तों? ये समस्याएं नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप उड़ता पंजाब के समय के अपने दिमाग का थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये उड़ता पंजाब फिल्म आप बिना मेरे इंस्ट्रक्शन के देखते तो आप शायद उसको इतना एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें एंजॉयमेंट वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन के बाद कि इस पर तो डिस्कशन होना है, अब आप उस फिल्म को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने ईमानदारी के साथ वो फिल्म देखी है तो, या मेरी कहे हुए बात पर ईमानदारी के साथ अमल कर रहे हैं तो आपने उस फिल्म को एंजॉय किया होगा। इसका मतलब है कि आपके एंजॉयमेंट के पैरामीटर्स भी बदल गए। वो कोई लव स्टोरी नहीं है, उसमें कोई रोमांच कथा नहीं है, उसमें कोई रहस्य कथा नहीं है। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ तो एक डॉक्यूमेंट्री की तरह चलती है, जो नशे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है जैसे। और डॉक्यूमेंट्री में कोई ऐसा इंटरेस्ट तो होता नहीं, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का आनंद लेने के लिए आपको एक संवेदना के अलग स्तर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो तो सच होता है, कहानी होती नहीं है। डॉक्यूमेंट्री मतलब जो सच हो रहा है, जो घट रहा है उसको दिखा रहे हैं। तो वहां तो करुणा का भाव पैदा होता है, वहां तो आक्रोश का भाव पैदा होता है। डॉक्यूमेंट्री में आपको आनंद नहीं देगा, लेकिन यह फिल्म आपको एक अलग तरीके के आनंद के धरातल पर ले गई है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेजर। सोच करके देखिए। और यह किस लिए हो गया है? सिर्फ इसलिए कि आपने अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि मेरा उद्देश्य क्या है। अब मैं एक लास्ट पॉइंट पर आता हूं दोस्तों, इसके बाद हम लोग इस पर कल भी बातें करेंगे, क्योंकि अभी मैं उस जगह पे नहीं पहुंचा हूं जहां रियल में मुझे बात करना चाहिए। दोस्तों, मैंने इस पर एनडीटीवी में एक ब्लॉग भी लिखा था। सच पूछे तो मुझे फिल्म उस तरीके से बहुत रोचक नहीं लगी, बहुत पकड़ वाली नहीं लगी, और इस फिल्म में बहुत सी कमियां हैं। सेकेंड हाफ के बाद जो फिल्म है वो पूरी तरह से, एक तरह से कह लीजिए कि उसका फिल्मीकरण कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री वाली पावर उसकी खत्म हो गई है, उसमें डायमेंशंस नहीं इमर्ज हो पाते हैं, समस्याओं के रूट तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, तो फिल्म बेकार हो जाती है। मैंने बहुत ही ओपनली इस पर लिखा है, और उसका मैंने रीजन क्या दिया है इसको समझ लीजिए आप। उसका रीजन ये है, इसको अब आप अपने दिमाग से जोड़ लीजिएगा, कि जो फिल्म का जो फिल्म बना रहा है या जो लिख रहा है या जो निर्देशित कर रहा है, उसके पास अनफॉर्चुनेटली समाजशास्त्रीय दृष्टि का अभाव था। उसके पास एक फिल्मी दृष्टि थी, उसको लग रहा था जैसे वो फिल्म बना रहा है। अगर उसके पास एक सोशियोलॉजिकल माइंड होता कि नहीं, वो तो एक समाज की समस्या के बारे में फिल्म बना रहा है, तो फिल्म का जो ट्रीटमेंट था बिल्कुल अलग होता। आप देखते हैं कि फिल्म के सेकेंड हाफ में क्या होता है। मेरे अगल बगल में जो लोग बैठे हुए थे, जो यंग जनरेशन के लोग थे, वो कमेंट पास कर रहे थे। उनकी संवेदना उन पात्रों से जुड़ ही नहीं रही थी। वो न तो दी गबरू से जुड़ पा रहे थे कि वो लंगड़ा हो गया और 100 किलोमीटर साइकिल चला करके वो आलिया को बचाने जाता है, न तो वो उससे जुड़ पा रहे थे और न कुछ दूसरी घटनाओं से जुड़ पा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि उधर जो पुलिस इंस्पेक्टर है SI है और इधर जो करीना कपूर है जो डॉक्टर है, उनके बीच में एक अलग किस्म की भावना पनप रही है। वो फिल्म को कमजोर कर देती, नशे जैसी जो इतनी ज्वलंत समस्या पर बात हो रही है वो उसको कमजोर कर देती है। फिल्म के अंत में वही गोलियां चल रही है, फटाफट ये हो रहा है, जिस तरह से वो फैक्ट्रीज में जाके जासूसी कर रहे हैं, वहां फिर डॉक्यूमेंट्री का स्वाद खत्म होकर के बिल्कुल उसका फिल्मीकरण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि सेकेंड हाफ के बाद फिल्म लचर हो जाती है, और इसलिए लचर हो जाती है क्योंकि अब उसका दिमाग समाजशास्त्रीय नहीं रह गया है, वो फिल्म बना रहा है। और फिल्म का मतलब है दर्शकों की रुचि के अनुसार काम करना, दर्शकों को हल्की फुल्की चीजें परोस देना, शायद उनके लिए यही फिल्म रही होगी। तो वहां फिल्म जाकर के कमजोर हो जाती है। क्या हमारे उत्तर लिखने में भी मित्रों यही नहीं होता है कि हम शुरू में तो लगता है कि कंटेंट बेस्ड आंसर लिख रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा कंटेंट देने के बाद में हम सुपरफिशियल लेवल पर चले जाते हैं, रोचकता के स्तर पर चले जाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो हम लिखने लगते हैं और जो थ्रस्ट है, जो कंटेंट है, वो हमसे छूट जाता है। तो मित्रों वक्त हो चला है, आज मैं फिल्म के बारे में आपसे इतनी ही बातें करूंगा, लेकिन डेफिनेटली कल मैं इसे कंटिन्यू करूंगा और कल हम इसी के बारे में और बात करेंगे, जिस जो सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के रूप में होगी। और आज भी जो मैंने बात की है, मत समझिएगा कि सिविल सर्विस के प्रिपरेशन से कोई अलग है, सच पूछिए तो ये तो सिविल सर्विस के कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में मैंने बात की है कि आपका तरीका क्या होना चाहिए। कल तो मैं आर्ट लिटरेचर एंड कल्चर और सोसाइटी को लेकर के आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूंगा। तो मित्रों अब प्रेस क्लिपिंग्स पर बातें करने नहीं जा रहा हूं, अवेलेबल है ये नॉलेज सेंटर पर, ये आप देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं ईमेल के सेक्शन में। दोस्तों सभी ईमेल लिखने वाले अपने साथियों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे पास एक पवनेश कुमार तिवारी हैं, उनका मेल आया है। उन्होंने लिखा है कि उनके परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं वो रोज डेली ऑडियो गाइडेंस सुनते हैं, कोई भी दिन नागा नहीं करते। तो पवनेश इस सूचना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को मेरा अभिवादन कहिएगा उनके इस प्यार के लिए कि वो मेरे इस डेली ऑडियो को उनका इतना प्यार मिल रहा है। तो मित्रों कुछ अब मैं दोस्तों के नाम ले रहा हूं ईमेल लिखने वाले, उनमें है स्नेहा कुमारी भागलपुर बिहार से, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, मनीष नगुलवार राम नारायण चौधरी जोधपुर से, चित्र ध्रुव गरियाबंद से, विनोद राठी रोहतक हरियाणा से, और सौरभ मिश्रा जसवान इलाहाबाद से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।